नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र को 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज यमुना बाढ़ क्षेत्र के पुनर्स्थापित हिस्से असिता में पलाश महोत्सव का उद्घाटन किया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में कण पदार्थ उत्सर्जन के सख्त वैधानिक दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए हैं और दिल्ली ओपन टेनिस में सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुल 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका समर्थन किया है। ये घोषणा पत्र आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई का लाभ उठाने पर व्यापक वैश्विक सहमति को दर्शाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत से प्रेरित इस घोषणा पत्र में एआई के लाभ मानवता के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इसमें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीन सूत्रों जन पृथ्वी और प्रगति के लिए निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। घोषणा पत्र में एआई इम्पैक्ट समिट के 7 स्तंभों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुहितधारक सहभागिता को और मजबूत करने का आह्वान किया गया है। ये स्तंभ मानव पूंजी के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच बढ़ाने, एआई प्रणालियों की विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता, विज्ञान में एआई के इस्तेमाल, एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग के सिद्धांतों पर केंद्रित हैं। निरुथी क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य मानव संसाधन और रणनीतिक अधिकारी राज पटनायक ने कहा है कि इंडिया एआई समिट सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री पटनायक ने बताया कि छात्रों समेत समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोग समिट में पहुंचे, जो नवाचार और स्टार्टअप में बढ़ती रुचि को दिखाता है। उन्होंने सरकार से देश में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने पर और अधिक बल देने का आग्रह किया। ईवीवे के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहसिन मेमन ने इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट को नव प्रवर्तकों और हितधारकों से जुड़ने का एक शानदार मंच बताया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री मेमन ने कहा कि इस समिट के माध्यम से उनकी कंपनी और कई अन्य कंपनियों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया और पहचान मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कल कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने आज कहा कि कांग्रेस ने कार्यक्रम में व्यवधान नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत के सम्मान और भारत के उज्ज्वल भविष्य को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना आचरण की आलोचना की और कहा कि उनका राजनैतिक स्वार्थ हमेशा राष्ट्रहित से ऊपर रहा है।
आज जब पूरा विश्व भारत को देख रहा था, इतना बड़ा इवेंट हमारे देश में हो रहा था और इतने प्रोस्पेक्ट देश के उसके साथ जुड़े थे, बहुत छोटी मानसिकता के साथ जो ड्रामा उन्होंने वहाँ पे किया, पूरा देश उनके ऊपर थुथु कर रहा है। कांग्रेस की मानसिकता इससे दिखाई देती है कि देश बढ़ता हुआ उन्हें कभी भी न पहले अच्छा लगता था न आज अच्छा लग रहा है, और मैं इसकी भर्त्सना करती।
भारतीय जनता पार्टी ने कल नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस कृत्य की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, ये कोई गलती नहीं बल्कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए दिल्ली सरकार जन सुनवाई को डिजिटल बनाने के साथ साथ इसे सरल, प्रभावी और पारदर्शी बना रही है। एक रिपोर्ट।
आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ साथ शिक्षा विभाग द्वारा नए कमजोर और दिव्यांग वर्ग के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय, निवास, जाति, विवाह, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड सहित 75 सरकारी सेवाओं को 7000 कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ने के कार्यों का भी शुभारंभ किया। जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से दिल्लीवासी अब पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज कर सकेंगे। वहीं कमजोर और दिव्यांग वर्ग के लिए पोर्टल निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और स्पष्ट बनाएगा, जिससे बच्चों को सही और निष्पक्ष अवसर मिल सकेंगे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से दिल्ली की जनता अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकेगी। उन्होंने बताया कि इन शिकायतों पर काम करने के लिए सरकारी कॉल सेंटर भी सक्रिय रहेंगे, साथ ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पोर्टल पर एक व्यवस्थित फीडबैक प्रणाली भी उपलब्ध रहेगी, जिससे राजधानी के हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग के द्वारा जो EWS एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, ये भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से बच्चे अपने एडमिशन फॉर्म की रिक्वेस्ट के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और आधार लिंक हमने इसे किया है ताकि हर बच्चा एक ही फॉर्म अपना भर पाए और उस फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होने के चांसेस जो होते थे वो खत्म हो।
यह कदम दिल्ली में नागरिक सुविधाओं को और भी सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मीनगर के विधायक और मुख्य सचेतक अभय वर्मा द्वारा पिछले एक साल में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुईं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पिछले एक वर्ष में लक्ष्मीनगर में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, बेहतर नागरिक सुविधाओं और स्थानीय विकास के कामों को नई गति मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज यमुना बाढ़ क्षेत्र के पुनर्स्थापित हिस्से असिता में पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। ये पुष्प महोत्सव दिल्ली में वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने और फूलों तथा पौधों की सुंदरता को दर्शाने के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मौसमी फूलों की सजावट शहरी सौंदर्य बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही उन्होंने स्थल पर विकसित एक नए साइकिल ट्रैक का भी उद्घाटन किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय महोत्सव इस साल 4 स्थानों पर सफल आयोजन के बाद असिता में अपने समापन चरण में प्रवेश कर रहा है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज कुतुबगढ़ और मुंगेशपुर गांवों के विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का शिलान्यास किया। श्री सिंह ने कुतुबगढ़ गांव में दिल्ली ग्राम विकास फंड के अंतर्गत शमशान घाट रोड और नालियों के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आज अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास किया। श्री मिश्रा ने आज दयालपुर गांव में बाबा दयाला चौक से सादतपुर एक्सटेंशन तक और करावल नगर गांव की मुख्य मार्केट से लाल बाग मंडी तक RCC सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय औषधिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली में एक निजी दवा कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। औषध विभाग के सचिव मनोज जोशी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री जोशी ने अनुसंधान से बाजार तक की प्रक्रिया को मजबूत करने में शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोगात्मक साझेदारी की भूमिका पर जोर दिया। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पंजाब के पुलिस महानिदेशक और जालंधर के पुलिस आयुक्त को औपचारिक समन जारी किया है। ये समन विशेषाधिकार हनन की चल रही कार्रवाई के तहत जारी किया गया है, जिसमें समिति ने इन अधिकारियों को इस महीने की 27 तारीख को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दे दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर अब व्यावसायिक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का केंद्र बिंदु बन गया है। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सीएसआर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने तथा कौशल विकास को उद्योगों से जोड़ने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी में कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में दिल्ली पुलिस द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो सोमवार तक चलेगी। ये प्रदर्शनी दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के साथ मनाए जाने वाले 79वें पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर इसका दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में हंगरी की राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष डॉ लाजोस ओलाह से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने बताया कि बैठक में संसदीय सहयोग को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने भारत तथा हंगरी के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के द्वितीय चरण का लोकार्पण करेंगे और संपूर्ण दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सरायकाले खां स्थित नमो भारत कॉरिडोर का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज दिल्ली एनसीआर में उद्योगों के लिए कण पदार्थ उत्सर्जन के सख्त वैधानिक दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इससे क्षेत्र में औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण को मजबूत किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चिन्हित उद्योगों में 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर का एक समान कण पदार्थ उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है। ये निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया है। कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्ययनों और सीपीसीबी द्वारा गठित तकनीकी समिति के सुझावों पर आधारित है। आयोग ने पाया कि औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली एनसीआर में कण पदार्थ के उच्च स्तर और द्वितीयक कण निर्माण करता है। इससे क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संशोधित दिशा निर्देशों से औद्योगिक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। इससे औद्योगिक स्रोतों के आसपास रहने वाले लोगों को लाभ होगा और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा। रोहन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
राजधानी में आज दिनभर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रह सकता है 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के सिद्धांत बंथिया और बल्गेरिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज यमुना बाढ़ क्षेत्र के पुनर्स्थापित हिस्से असिता में पलाश महोत्सव का उद्घाटन किया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में कण पदार्थ उत्सर्जन के सख्त वैधानिक दिशा निर्देश निर्धारित किए। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।